आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत नहीं थी, वे साफ सुथरे शरीर, साफ मन और स्वच्छ वातावरण को एक बेहतर समाज का जरूरी हिस्सा मानते थे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया था। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़े, आबादी बढ़ी और हमारी खपत बढ़ी, कचरे की मात्रा भी बढ़ती गई। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य कचरे को केवल हटाना नहीं बल्कि उसकी पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 किस तरह कचरे के प्रबंधन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही समझेंगे कि शहरों में वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ को हटाने की दिशा में क्या काम हो रहा है और कचरे को किस तरह ऊर्जा, खाद और दूसरे उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है। श्रोताओं, शहरों में बढ़ती आबादी और बदलती जीवन शैली के साथ कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन समस्या केवल कचरे की बढ़ती मात्रा की नहीं है। जब कचरे को सही तरीके से अलग, कलेक्ट और प्रोसेस नहीं किया जाता तो इसका असर हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। कचरा खुले में पड़ा रहे या बिना छंटाई के एक जगह जमा होता रहे, इससे हवा और पानी के प्रदूषण के साथ साथ बीमारियों और आग जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है। दूसरी ओर कचरे में मौजूद कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन जब अलग अलग तरह का कचरा एक साथ मिल जाता है तो इन चीजों को वापस उपयोग में लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कचरा प्रबंधन की शुरुआत वहीं से जरूरी है जहाँ कचरा पैदा होता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। पहली अप्रैल 2026 से लागू हुए ये नियम वर्ष 2016 के नियमों की जगह लेते हैं और कचरे के कलेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग तथा डिस्पोजल तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। आइए अब समझते हैं कि नए नियम इस व्यवस्था में क्या बदलाव लेकर आए हैं।
इनका सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कचरे को चार अलग अलग हिस्सों में बांटना। पहला है गीला कचरा। इसमें रसोई का कचरा, फल सब्जियों के छिलके और खाने से जुड़ा दूसरे तरह का जैविक कचरा आता है। इसे खाद बनाने या बायोगैस तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है सूखा कचरा। इसमें कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच और लकड़ी जैसी चीजें आती हैं। इन्हें अलग करके दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिलिंग के लिए भेजा जा सकता है। तीसरा है सैनिटरी वेस्ट, जैसे इस्तेमाल किए गए डायपर्स और सैनिटरी पैड्स। इसे अलग और सुरक्षित तरीके से रखना जरूरी होगा। चौथा है स्पेशल केयर वेस्ट। इसमें दवाइयाँ, बल्ब, मरकरी वाले उपकरण और पेंट कैंस जैसी चीजें शामिल हैं। इन्हें सामान्य कचरे के साथ मिलाने के बजाय अधिकृत एजेंसियों या तय किए गए केंद्रों तक पहुंचाना होगा। नए नियमों में बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की जिम्मेदारी तय की गई है। जिन संस्थानों का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है, या जो रोज 40,000 लीटर या उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, या प्रतिदिन कम से कम 100 किलोग्राम कचरा पैदा करते हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर्स माना गया है। इनमें बड़े सरकारी कार्यालय, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और रेसिडेंशियल सोसाइटीज जैसे स्थान शामिल हैं। इन संस्थानों को अपने कचरे के कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी निभानी होगी। जहां संभव हो गीले कचरे को उसी परिसर में प्रोसेस करने पर जोर दिया गया है। नए नियमों में टेक्नोलॉजी को भी महत्वपूर्ण जगह दी गई है। कचरे के पैदा होने से लेकर उसके कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल तक की जानकारी एक सेंट्रल ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ट्रैक की जा सकेगी। वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन होगा। फैसिलिटीज का ऑडिट किया जाएगा और की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अगर कोई व्यक्ति या संस्थान नियमों का पालन नहीं करती, गलत जानकारी देती है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लैंडफिल के मामले में भी सोच बदली गई है। अब लैंडफिल में वही कचरा जाना चाहिए जिसे न रिसाइकल किया जा सकता है, न उससे एनर्जी हासिल की जा सकती है और न ही उसका कोई दूसरा उपयोग संभव है।
श्रोताओं, नए नियम आज से व्यवस्था तो सुधार सकते हैं, लेकिन शहरों में पिछले कई दशकों से जमा कचरे का क्या होगा? भारत के कई शहरों में कचरे के बड़े बड़े ढेर आज भी मौजूद हैं। ये केवल पुराने कचरे के ढेर नहीं हैं, इनसे जमीन, हवा और भूजल पर असर पड़ता है। इनमें आग लगने और हानिकारक गैसें निकलने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए कचरे के प्रबंधन की नई व्यवस्था तभी पूरी मानी जाएगी जब हम पुराने डंप साइट्स को भी खत्म करें और नए डंप साइट्स बनने से भी रोकें। इसी सोच के साथ सामने आता है लक्ष्य जीरो डंप साइट। ये सिर्फ सफाई का अभियान नहीं है, इसे ऐसे विकास की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है जिसमें शहर साफ भी हों और कचरे से संसाधन भी तैयार हों।
भारत में करीब 2479 लेगेसी डंप साइट्स की पहचान की गई है। इनमें वर्षों से करीब 25 करोड़ मीट्रिक टन कचरा जमा है और ये करीब 15,000 एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं। इन पुराने डंप साइट्स को हटाने के लिए नवंबर 2025 में डंप साइट रिडेम्पशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी अभियान का नाम है लक्ष्य जीरो डंप साइट। इसके तहत पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से हटाया जा रहा है। इसे बायो माइनिंग कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो पुराने कचरे को खोदकर बाहर निकाला जाता है और फिर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। अब तक 60% से अधिक लेगेसी वेस्ट को प्रोसेस किया जा चुका है। जीरो डंप साइट की दिशा में 214 हाई इंपैक्ट डंप साइट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें देश में बचे हुए लेगेसी वेस्ट का करीब 80% हिस्सा मौजूद है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, डंप साइट हटाना अपने आप में अंतिम हल नहीं है। अगर आज पुराना डंप साइट हटा दिया और कल फिर उसी जगह नया कचरा जमा होने लगा तो समस्या वापस आ जाएगी। इसलिए जीरो डंप साइट की रणनीति दो हिस्सों पर काम करती है, पुराने कचरे को हटाना और नए डंप साइट्स बनने से रोकना। इस रणनीति के तहत शहरों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, कंपोस्ट प्लांट्स और वेस्ट टू एनर्जी जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। यानी कचरे की यात्रा अब लैंडफिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि रिकवरी और रीयूज तक पहुंचने की होनी चाहिए। यही सोच हमें सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ले जाती है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है किसी चीज के इस्तेमाल के बाद उसे सीधे कचरा मानने की बजाय उसमें मौजूद संसाधन को फिर से उपयोग में लाया जाए। ये सोच केवल शहरों के कचरे तक सीमित नहीं है, कृषि में भी हर साल बड़ी मात्रा में वेस्ट पैदा होता है। भारत में हर साल करीब 350 मिलियन टन कृषि कचरा पैदा होने का अनुमान है। इसमें फसल के अवशेष, भूसा, धान की भूसी, पशुओं का गोबर और फूड प्रोसेसिंग से निकलने वाला कचरा शामिल है। अगर इन्हें जला दिया जाए या खुले में छोड़ दिया जाए तो इससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बढ़ सकते हैं, लेकिन यही कचरा खाद, बायोगैस, बायोफ्यूल और दूसरे उपयोगी उत्पादों का स्रोत भी बन सकता है। इसी सोच के तहत गोबर्धन जैसी पहल पशुओं के गोबर, फसल के अवशेष और फूड वेस्ट से बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करने को बढ़ावा देती है। 14 जनवरी 2026 तक देश के 51% से अधिक जिलों में 979 बायोगैस प्लांट्स काम कर रहे थे। इसी तरह क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के तहत किसानों को फसल के अवशेष जलाने के बजाय उन्हें खेत में मिलाने और खेत की मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया यानी मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करने या दूसरे उपयोगों के लिए बाहर ले जाने में मदद दी जा रही है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
श्रोताओं, स्वच्छता सरकार, नगर निकायों और उद्योगों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसकी शुरुआत हम नागरिकों से होती है। हम घर से निकलने वाले कचरे को अलग करते हैं या नहीं, सड़क पर कचरा फेंकते हैं या नहीं, सिंगल यूज चीजों का इस्तेमाल कितना करते हैं और अपने आसपास सफाई बनाए रखते हैं या नहीं, इन छोटे फैसलों का असर पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। स्वच्छ भारत का लक्ष्य केवल साफ सड़कें और साफ शहर नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य है जिसमें स्वच्छता हमारी आदत बने और विकास के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। आप इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें।